नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसकी फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बी द चेंज ये सीरीज का नाम है और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि। पिछले कई दिनों से बदल रहे उस दौर को अपने आप के अंदर समाने की कोशिश हम कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी इसकी ये विशेष पहल रही है कि अगर इस बदलाव के दौर में अगर आपको किसी इमोशनल सपोर्ट की, स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता है तो वो देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो हम ये आउटरीच कर रहे हैं इसके लिए आपसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप सभी दोस्त बहुत अच्छे तरीके से अपने दिल के दरवाजे खोलकर अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और इसी शेयरिंग से बहुत सारी अच्छी चीजें भी निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग जो इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं थे उन परिस्थितियों को डील करने के बारे में सोच रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। इस बदलाव के दौर में अपने आप को शक्तिशाली बनाने का एक अच्छा मौका है। अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने का भी ये मौका है जिसे हम ले सकते हैं और बदलाव को सकारात्मक बना सकते हैं। बी द चेंज जैसा नाम कहता है कि हम खुद वो बदलाव बने जो दूसरों को बदलाव के लिए प्रेरित करें। बदलते समय के डिमांड्स को देखते हुए हम भी बदल रहे हैं और आप भी बदल रहे हैं। आइए बदलाव की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हर दिन की तरह हमारे साथ एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं जो अपने स्पिरिचुअल विजडम को हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सुलभा दीदी जी हैं जो पुणे से हमारे साथ में जुड़े हैं। दीदी जी आपका स्वागत है।
ओम शांति, गुड इवनिंग।
सुलभा दीदी जी अनेक दशकों से ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ब्रह्मा कुमारी के पुणे की सेवाओं में भी वो अपना सक्रिय योगदान देती हैं और लाखों लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए वो प्रेरित करती रहती हैं। आज के वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं और उनसे हम करेंगे बातचीत। सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई ऐसे ख्याल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर वो सवाल नहीं भी है, सिर्फ कोई बात है जो आप हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो भी आप सवालों को, अपनी बातों को, अपने फीडबैक्स को, कमेंट्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यानी फेसबुक पर इस वीडियो के कमेंट में और यूट्यूब पर भी इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं और यहां से हम कुछ कमेंट्स को स्क्रीन पर शेयर करेंगे और कुछ सवालों को आज हमारे गेस्ट के साथ हम पूछेंगे और उनसे हम आंसर्स भी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं पहला सवाल ही लेना चाहता हूं जो कल से ही जुड़ा हुआ है। कल बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके बहुत सारे सवाल थे और एक ही घंटे में हम सारे सवालों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हम सारे सवाल नहीं पूरे कर पाते हैं, पर कोशिश आज भी रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल दीदी जी से पूछें और उनके लिए गाइडेंस लें। दीदी, पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं कि वर्क प्लेसेस पे बहुत सारी चीजें बदल रही है। जैसे आप पुणे में रहते हैं, आप भी जानते हैं आईटी फील्ड में बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक दोस्त ने ये सवाल पूछा था कि वो आईटी में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो एक तरह से तो ये अच्छा हो रहा है कि हमें ऑफिस जाने के लिए जो वक्त मिलता था, वक्त खराब होता था, उसके लिए जो टाइम स्पेंड करना पड़ता था वो तो बच रहा है, मगर घर पर काम करते करते बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। जैसे बच्चों का होमवर्क भी कराना है और बीच बीच में ऑफिस का काम भी करना है, कोई मीटिंग भी आ रही है तो दरवाजा बंद करके मीटिंग अटेंड करना पड़ रहा है, बीच में कोई दरवाजे खोलने के लिए बच्चे जिद करते हैं तो फिर बच्चों पे गुस्सा भी करना पड़ रहा है, तो जो चीजें अदरवाइज कभी बच्चों के साथ नहीं होती थी आज वर्क और लाइफ दोनों ही का जो बैलेंस घर पे ही बैठ के बनाना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, पूछते हैं।
बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल अभी के सिचुएशन के हिसाब से सवाल है। हमारे पास भी कई भाई हैं जो आईटी से जुड़े हुए हैं और अभी घर से ही वो अपना वर्क कर रहे हैं, तो ये जो आपने कहा वो भी हमको यही शेयर करते हैं कि वहां तो फिर भी हम लोगों का अपना केबिन होता है तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, यहाँ हमको बहुत दिक्कतें आती है जब इस प्रकार से कोई बीच बीच में आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आता है और मल्टीटास्क करना होता है ना एक साथ, तो बुद्धि का फोकस होना बहुत जरूरी होता है। अपनी प्रायोरिटीज को अगर हम समझते हैं तो भले एक साथ हमको कई काम करने हो तो भी हम डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि फिर भी ये माइंडसेट का ही काम है ना। अगर हमारा मन अंदर से शांत है, स्थिर है, तो फिर भले बाहर से बहुत सारी हलचल हो, बहुत सारी बातें एक साथ हमको करनी हो, लेकिन फिर भी हम स्टेबल रह करके वो चीज कर लेते हैं, हैंडल कर पाते हैं। इसलिए मन का एकाग्र होना, स्टेबल होना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि एकाग्रता ही हमें बहुत सारे काम करने के लिए मदद करती है। जैसे हम देखते हैं ना, देवी हमको अनेक हाथ दिखाते हैं, तो एक साथ कई सारे काम होते हैं ना। जैसे एक अच्छी हाउसवाइफ होती है तो वो भी कैसे करती है, एक साथ बच्चे को नहलाएगी, खिलाएगी भी, उसके ऊपर ध्यान भी देगी, कुकिंग भी करेंगी, साथ साथ दूसरा कुछ काम भी करेंगी। इस प्रकार से एक टाइम पर वो भी तो बहुत सारे काम करती रहती है ना। तो इस प्रकार से ये लोग भी जो आईटी के करते हैं वर्क, उनको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम फोकस रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, तो बाकी चीजों को भी हम उतनी एनर्जी दे पाते हैं जितना वो जरूरी है। तो सभी चीजें एक साथ हम एक टाइम पर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा बुद्धि की एकाग्रता की आवश्यकता है। तो अगर हम उस प्रकार से अपनी बुद्धि को स्टेबल बनाते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऐसे में लगता है।
तो सिर्फ ये है कि हम मल्टीटास्किंग को अच्छा नहीं मानते थे, कुछ लोग तो ये भी समझते थे कि नहीं, एक टास्क को एक टाइम पे किया जाना चाहिए। मल्टीटास्किंग करने की वजह से हम एक चीज पे फोकस करते करते ध्यान कहीं और बढ़ जाता है, तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारे ध्यान के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो फिर शायद चीजें बेहतर हो सकती है। कुछ और सवाल है तो हमारे दोस्तों ने पूछना शुरू किया है, तो मैं लाइव फीड से सवाल लेना शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल बच्चों से रिलेटेड है, और इसी सवाल को मैं यहाँ आज के प्रोग्राम के फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में लेना चाहता हूँ जो हमारे दोस्त पूछ रहे हैं। बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे जगह बच्चे घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने लग गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई के बारे में ये सवाल पूछती हैं, अंजू नाम है इनका, और ये अंजू जी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब पर लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। वो कहते हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताएं, 8 से 14 साल के बच्चे हैं इनके, तो उनके पढ़ाई के बारे में हमें क्या करना है। इससे मिलता जुलता ही एक सवाल है, अनिल जी का सवाल है। अनिल फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। When teenager children ignore us, what to do? ये बहुत सारे चीजें देखने को आ रही हैं। पहले टीनेजर्स थे, कॉलेज चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे, तो पता नहीं चलता था। अब घर पे बैठ के बच्चे फोन कर रहे हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो माता पिता इग्नोर फील कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, ये सवाल।
बच्चे ही माँ बाप की जिंदगी होते हैं, तो वैसे तो सारी चीजें बच्चों के लिए की जाती है, लेकिन जब बच्चों को संभालने की बात आती है या उनके ऊपर ज्यादा फोकस होते हैं, तो भी थोड़ा इटेशन होता है लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं। आज ही मैंने किसी से सुना, हमारे पुना में एक बहुत अच्छे पद पे एक VIP व्यक्ति है, आयुक्त रहते पुना के, तो वो अपने वर्क में इतना बिजी रहते थे कि उनको कभी टाइम ही नहीं होता था अपने बच्चों के साथ देने के लिए। तो अभी उनके पास बहुत टाइम है, तो वो कहते कि दीदी अभी मुझे पता पड़ा कि मेरी बच्ची 9th क्लास में है, और अभी पहले मैं उसके साथ बिल्कुल बात नहीं कर पाता था। तो पहले मैं जब घर में बैठा लॉकडाउन के टाइम, तो 2-4 दिन तो ऐसे हुआ कि वो मुझे देख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, कोई बात ही नहीं, मतलब कभी बात ही इतना हो ही नहीं पाती थी, टाइम ही नहीं दे पाते थे शेड्यूल की वजह से। फिर 2-3 दिन एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रहे, फिर 2-4 दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा उनके साथ बात करने लगे, और अभी इतना अच्छे से बात करती है कि वो कहते कि अब जब वर्क शुरू हुआ है, अगर 6 बजे है तो वो मुझे फोन करते कि पापा अभी तक आप आए नहीं, तो कहते मुझे बहुत इच्छा, इतना अच्छा लगता है कि लॉकडाउन ने मुझे गिफ्ट दिया कि अपने बच्चों के समीप गया मैं, और मैं उनको टाइम दे पा रहा हूँ, उनके अंदर वो फीलिंग मैंने क्रिएट की कि हाँ मैं भी उनको केयर करता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उनके लिए कर रहा। तो हम देखते हैं कि माता पिता को यही होता है कि हम जो भी करें अपने बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर, लेकिन वो भावनाएं उनके तक नहीं पहुंचती है, या वो फिर हमारी नहीं सुनते हैं, ऐसा हमको लगता है, इग्नोर करते हैं, या फिर हम उनको कैसे हैंडल करें ऐसा लगता है। वैसे भी देखा जाए तो वो आपकी रचना है, इसलिए आप जितना प्यार और जितना उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे, उतना उनके ऊपर असर करेंगे। ऐसे कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरे जो पाप की, मतलब माता पिता की दुआएं बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है, या मुझे इग्नोर करते हैं, या फिर उनको हैंडल करना मेरे लिए बड़ा मुसीबत हो गया है, स्कूल जाते थे तो ही अच्छा था। पहले तो आप अगर इस प्रकार का भाव रखेंगे तो वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, मतलब वो सोशल डिस्टेंस तो बड़ा नहीं है लेकिन मेंटल डिस्टेंस बढ़ेगा, उनको आपके प्रति अंदर में वो प्यार भाव जागरूक कैसे होगा। तो ये मेरे अपने बच्चे हैं, और इनको संस्कारित करने के लिए मुझे समय मिला हुआ है, उनको समझने के लिए मुझे समय मिला हुआ है, ऐसा भी आप देख सकते हैं। और उनको बहुत प्यार प्यार से मुंह सिखा सकते हैं जो हम चाहते हैं। कभी कभी बोल के नहीं हो पाता है क्योंकि उनका थिंकिंग पैटर्न हमारा, बड़ों का थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, तो बच्चे उस भाव को पकड़ नहीं पाते। पर हमारी भावनाएं अगर उनके प्रति हम शुद्ध बना के रखते हैं तो बच्चे उसको कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी से। ऐसे भी कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप को देखते हैं, उनसे उनको प्यार और शक्ति एनर्जी ही जरूरी होती है, क्योंकि वो समझ नहीं रखते कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो प्रॉपर जो उनको देना है हमको, वो हम ही उनको दे सकते हैं। इससे पहले तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिव बनाए बच्चों के प्रति, और साथ साथ जैसे उनके प्रति अच्छा सोचे कि मेरे बच्चे बहुत सेंसिबल है, बहुत होशियार है, हम जो कहते हैं उस प्रकार से हमारी मानते हैं, तो आखिर हमारे अपने बच्चे ना, इस प्रकार से हम उनके बारे में सोचे। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी बात सुनी, हम सोचते थे कि एजुकेशन नहीं हो रहा है तो बच्चों का क्या होगा, पर बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि एक मतलब बहुत छोटी बच्ची 4 साल की इतनी अच्छी रोटियां बनाना सीखी माँ की मदद से कि वंडर लगता है कि ये कैसे बना लेती इतना अच्छा। तो कहती मैं देखा, मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने सीख लिया। एक बहुत छोटा सा बच्चा मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड का, उसको अपने पापा ने पानी में मतलब स्विमिंग करना सिखा। पहले तो वो डरता था जब चिल्लाता था, पर अभी उसको एंजॉय कर रहा है। तो कहते हैं कि पहले जो गुरुकुल प्रणाली थी भारत में, और उस समय जो बच्चों को ओपन प्लेस में सिखाया,
दीदी जी के कनेक्शन में मुझे लगता है थोड़ी सी
अभी देखा जाए तो जी, तो अभी मुक्त रूप में अगर शिक्षा देते हैं तो जीवन के लिए जरूरी चीज है, वो उल्टा उनको जास्त सीखने को मिल रही है। हम ये नहीं सोचे कि एक तो इनका एजुकेशन नहीं हो रहा है, ये तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पता नहीं इनका फ्यूचर क्या होगा, फिर ये कैसे बनेंगे, ऐसे सोच सोचते ही हम पहले इरिटेट होते हैं, तो उसके कारण फिर इरिटेशन उनके पास चला जाता है। हम सोचे कि हमारे पास तो बहुत वो है क्षमता है, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल इनोसेंट है ना, तो वो तो कितनी मस्ती में रहते हैं अपने और अपने ही दुनिया में रहते हैं, तो उल्टा वो जास्ती क्रिएटिव होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को जास्ती मतलब ये करे सहयोग दे, वो बहुत अच्छी तरह से आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे और आपकी बातों को भी सुनेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अनुभव है।
बहुत अच्छी बात है आपने कही। बहुत बार हम लोग ये मन में सवाल बना लेते हैं कि बच्चे ऐसा करेंगे क्या होगा, टाइम खाली है, वेस्ट कर रहे हैं। जब हम खुद ये सोचने लगते हैं तो हम एक कम्युनिकेशन का बैरियर क्रिएट कर देते हैं। हालांकि हम बोल नहीं रहे हैं, बट क्योंकि हमने सोच लिया है ऐसा, तो हमारी बातचीत में भी कहीं ना कहीं चीज वो झलक जाती है, तो बच्चे थोड़े और सोशल डिस्टेंसिंग को, जैसे आपने कहा वो रियल डिस्टेंसिंग होने लगता है, तो वैसे होने नहीं देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एक और सवाल मैं लेना चाहता हूँ। पूजा हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा फेसबुक से हमारे साथ लाइव हैं। पूजा पूछते हैं, मैं जानना चाहती हूँ अगर हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन हमने क्रिएट किया जिसे हमने सामने वाले को बहुत हर्ट कर दिया हो, जिससे वो टूट गया हो, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहले तो ये बहुत अच्छी बात है पूजा जी, आपको ये रियलाइजेशन है कि ऐसा हुआ है, बट ये बिल्कुल ट्रिकी सिचुएशन होता है। हमें पता है कि हमने किसी को डैमेज कर दिया है, किसी का नुकसान किया है, हर्ट किया है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, ये आप गाइड करें सुलभा दीदी जी।
पूजा जी बहुत अच्छा आपने पूछा है कि आपको ये लगता है कि मेरी वजह से किसी को दुख हुआ है, वो हर्ट हुए, तो मुझे उसके लिए क्या करना है। तो जैसे जख्म होता है तो उसको हील करना भी जरूरी होता है, तो आपको ये अंदर से आ रहा है ना, तो फिर आप उनके लिए अच्छा भाव रखिए, आप उनको उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे, गुण विशेष देंगे, पॉजिटिव एनर्जी आप उनके लिए अगर रखेंगे तो उनके बिहेवियर के अंदर भी चेंज हो जाएगा। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप उनको उनके प्रति बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचिए कि कैसे उन्होंने आपको कभी सहयोग किया था, कैसे वो आपके लिए बहुत विशेष है और उनके अंदर क्या विशेषताएं है। इस प्रकार का थिंकिंग आप करेंगे ना, तो मन जो है वो उनका हील होगा। अभी हीलिंग प्रोसेस है, तो हीलिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे स्थूल जख्म के लिए उनके लिए हम कुछ ऊपर से क्रीम आदि लगाते हैं और उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से अगर मन को कोई जख्म होता है तो उसको हील करने का जो प्रोसेस है वही है कि हम अपने मन में उनके प्रति बहुत ऊंची भावनाएं रखें, श्रेष्ठ भावनाएं रखें और मन से उनकी माफी मांगे कि दिल ही दिल में हम कहें कि जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया है मुझे लगता है गलत है, तो प्लीज आप मुझे दिल से क्षमा कीजिए और आपके कारण भी अगर मैं कभी अट हुई तो मैं भी दिल से आपको क्षमा करती हूँ। तो ये जितना बारी आप अगर ये करेंगे ना, जब भी आप उनको याद करेंगे, तब जितनी बारी आप ऐसा करेंगे ना, तो वो वाइब्रेशन उनके पास जाएंगे, उनको महसूस होगा कि ठीक है इन्होंने बोला या इन्होंने ये किया, लेकिन वो सिचुएशन अलग किसके कारण बोला, मतलब वो माइंडसेट उनका चेंज हो जाएगा आपके प्रति। वो जो भी आपके बीच में हुआ है उसको पकड़ करके नहीं बैठेंगे, वो चीज को भुलाने की ताकत उनमें भी आएगी, क्योंकि आप उनके मन को क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। इस प्रकार से आप उनके मन को हील कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, शुभ भावनाएं दीजिए, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा वापस उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, किस सिचुएशन में मैंने ये बोला है ये उन्होंने समझ लिया है, इसलिए वो मुझे दिल से माफ कर रहे और मेरा रिलेशन वापस बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से भी बेटर हो रहा है। इस प्रकार से आप सोचिए तो आप वंडर देखेंगे कि वृत्ति के द्वारा वृत्ति का परिवर्तन बहुत जल्दी होगा और वापस आपका रिश्ता बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा। ओके,
बहुत अच्छी बात है जो आप ये बात कह रहे हैं कि वाइब्रेशन से ये चीज हो सकती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं जिन्होंने मेडिटेशन को पहले कभी ट्राई नहीं किया है, या फिर वो इन एस्पेक्ट्स को नहीं जानते कि वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा कि क्या मैं सिर्फ ये बैठ के सोचने लगूं कि चलो मेरा सब ठीक हो रहा है, मैं उनको माफ कर देता हूं, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, क्या इस चीज से चीजें वाकई में ठीक होती हैं, ये कैसे काम करता है, ये एक प्रश्न है। और इसके साथ ही मैं एक और प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ, पुष्पा जी का सवाल है। पुष्पा फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं किसी का नेचर बुरा है, उसे चेंज करने के लिए क्या करें ताकि उनका नेचर अच्छा हो जाए। अगर इस पर भी मैं वही चीज यूज करना चाहता हूँ जो आपने अभी भी सुलभ जी ने बताया कि दीदी आप कह रहे थे कि मैं उनके लिए अच्छी भावनाएं रखूं, तो बहुत बार ये सवाल मन में उठता है कि क्या मैं उनके लिए अच्छा सोचने लगूं, इससे काम हो जाएगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में क्या बताएं।
सबसे पहले बात तो ये बहुत अच्छी है कि देखिए कि हम अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते, हर व्यक्ति जीवन में अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहता है, तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमने जो इमेज दूसरों के लिए अपने मन में क्रिएट की है कि वो बुरे हैं, एक्चुअली आइसबर्ग जैसे होता है समंदर में, तो उसका 10% पार्ट जो है ऊपरी होता है उसको ही हम देख पाते हैं, 90% पार्ट को तो हम समझ भी नहीं पाते। तो हर व्यक्ति के बारे में यही लागू होता है कि जैसे हम उनके साथ बिहेव करते हैं तो हमको लगता है ये ऐसे ही है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ भी तो उनकी बनती है, कई सारे लोग उनको भी अच्छा कहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि हम किसी को भी ऐसा लेबल नहीं लगा सकते या फाइनल हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये बहुत मतलब बुरे हैं और इसलिए मुझे उनको सुधारना है, नहीं, सब बहुत अच्छे क्योंकि सभी परमात्मा की संतान है, ईश्वर के बच्चे है, हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज है, तो हमको परमात्मा बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, समझो कि इसके अंदर 99% भी बुराइयां है लेकिन 1% भी अच्छाई है, तो आप उस अच्छाई के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप अच्छाई के बारे में सोचेंगे तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा। दूसरी बात है कि हमारे अच्छे सोचने से क्या फर्क पड़ेगा, तो जरूर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हम लोग जो इतने साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको जो परमात्मा ने शिक्षाएं दी है कि किस प्रकार से हमको अपनी वृत्ति के द्वारा दूसरों की वृत्ति को बदलना है, तो टेलीपैथी मैच होती है, जैसे हम किसी को दिल से याद करते हैं तो वहां से तुरंत उसका फोन आता है या तुरंत जैसे उसके द्वारा मैसेज आता है, हम कहते हैं देखो अभी मैंने आपको याद किया था, कितनी अच्छी बात है कि आपने मुझे फोन किया। तो इस प्रकार से हम दिल से अगर उनको याद करते हैं या दिल से उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, तो शुभ भावनाएं जरूर हमारे में काम करती, वर्क करती, इसके कई सारे अनुभव है हमारे पास, हम लोगों ने करके देखा है, ऐसे ही नहीं बताते हैं कि संबंधों में कभी ऐसा हो जाता है ना, संस्कार अलग अलग होते हैं लोगों के, तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है, वो आप ही ऐसे कुछ मन में धारणाएं बना के बैठते हैं इसलिए हमारे साथ कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं, या फिर वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते, हमको डोंट केयर कर लेते हैं, तो हमको वो वाइब्रेशन आता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है जो इनको ऐसा लग रहा है। वैसे समय पर कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं कि सीधा बोलने से भी नहीं होता है, जैसे समय पर हम लोग मेडिटेशन करते हैं और फिर उसमें हम परमात्मा के आगे उनको बताते हैं कि आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो या हमारा संबंध बहुत अच्छा है, हम एक परमात्मा की संतान है और हमको आपस में बहुत अच्छे से रहना चाहिए और हमारे से प्रेम के वाइब्रेशन उनको जा रहे हैं, वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस प्रकार से हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकल आता है। अभी कल का ही मेरा अपना एक ये है अनुभव है, किसी के साथ थोड़ा सा हुआ था मतलब इस अंडरस्टैंडिंग के कारण, और बात तो कर रहे थे पर बातों से ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो है, इसके कारण वो जो कंफर्टेबिलिटी है वो फील ही नहीं हो रही थी। तो फिर जब मैं मेडिटेशन करती हूँ शाम को 5 से 6 तो मैंने उसमें सिर्फ उनके प्रति अच्छा सोचा कि हमारी कितनी अच्छी बनती है, पता नहीं अभी इनके मन में अभी क्या है, लेकिन मेरा मन बहुत अच्छा है, साफ है, दिल है और मैं इनके प्रति इतनी अच्छी भावनाएं, प्रेम की भावनाएं रखती हूँ, तो ठीक है थोड़ा टाइम मैं उनको दूंगी लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा और वो मुझे समझेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ मैं 6th क्लास बाहर निकली मेडिटेशन रूम से, उनका ही सबसे पहले कॉल मुझे आया। आप बताइए ये प्रैक्टिकल मैंने अभी का अनुभव किया, ऐसे कई सारे अनुभव है। तो वृत्ति के द्वारा वृत्ति का परिवर्तन होता है, आप अपनी शुभ भावनाएं बना के रखिए तो फिर उसका असर जरूर होता है।
बहुत अच्छी बात आपने कही, वृत्ति के द्वारा वृत्ति का परिवर्तन होता है। बहुत बार हम सामने से एक्सपेक्ट करते रहे कि चीजें ठीक हो जाए, ऐसा नहीं, बट आप उन चीजों को वैसे देखना भी शुरू करें, उसी लाइट में अगर आप देखना शुरू करते हैं तो नेचुरली उसका असर होता है। पहले तो आपके अंदर ही वो परिवर्तन आ जाता है कि आप उस इनडिफरेंस से बाहर आ जाते हैं और नेचुरली बहुत बार ये होता है, जैसे आपने ये एग्जाम्पल अपना बताया तो ये समझने में आसानी होती है। ऐसे कितने बार होता है कि जब हम खुद ये सोचने लगते हैं तो सामने से वो व्यक्ति आ जाता है और एक बदलाव स्वरूप देखने को मिलता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक सुखद एहसास होता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। हमारे दोस्त जो लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कहीं पर भी जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज शेयर करनी है हमारे साथ, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मास्टर मेडिटेशन से, या फिर कोई ऐसी बात है जो बस आप सिर्फ फीडबैक के रूप में देना चाहते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और हम उनमें से कुछ कमेंट्स को यहाँ पर वीडियो पे दिखाएंगे भी और कुछ सवालों को हम यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने कुछ समय पहले फीडबैक ये दिया था कि हाँ हमें मेडिटेशन के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया जाए, हमें गाइडेड मेडिटेशन कराया जाए। आपके इस फीडबैक को देखते हुए हर दिन शाम को 5:30 बजे कोशिश ये की जा रही है कि 15 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन सेशन ब्रह्मा कुमारी के ऑफिशियल फेसबुक पेज और ब्रह्मा कुमारी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर facebook.com/ब्रह्मा कुमारी और youtube.com/ब्रह्मा कुमारी पर इंग्लिश में गाइडेड मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है 15 मिनट्स के लिए 5:30 PM इंडिया टाइमिंग के हिसाब से, भारत के समय के हिसाब से 15 मिनट का ये अंग्रेजी में गाइडेड मेडिटेशन प्रोग्राम होता है जहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं और दूसरों को भी करा सकते हैं। अगर आप नए भी हैं मेडिटेशन के लिए तो आप कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं मेडिटेशन तो सब लोग मिलकर कलेक्टिवली इस मेडिटेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ फेसबुक से, हमारे साथ उर्मिला कुमारी हैं। उर्मिला जी का सवाल है, ओम शांति, हाउ कैन आई ओवरकम डीप गिल्ट अवर मिस्टेक्स, प्लीज टेक माई क्वेश्चन, कह रहे हैं उर्मिला जी। आपका सवाल अच्छा है, बहुत सारे लोग अपने गिल्ट से, अपने मिस्टेक्स से बाहर उभरने की कोशिश करते हैं बट बार बार वही मिस्टेक्स उनके याद आते हैं तो बहुत गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं। दीदी जी से मैं यही पूछना चाहूंगा, ये हालांकि उर्मिला जी का सवाल है बट बहुत बार हम अपनी गलतियों के लिए अपने आप को नहीं माफ कर पाते तो बहुत गिल्टी फील करते हैं, तो उससे कैसे हम बाहर निकले, ओवरकम करें।
बहुत अच्छा सवाल उर्मिला जी आपने पूछा है। एक्चुअली जीवन जीना है तो बोझ लेकर के नहीं चल सकते हैं। जो भी हमसे हुआ है, अगर हमने पर्पस भी किया होगा या समझो कभी कभी सडनली भी कुछ हो जाता है, तो अगर हम उसको पकड़ करके रखते हैं तो फिर होल्ड करके रखते हैं तो आगे चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में अन्याय की भावना या गिल्ट की भावना लेकर के हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको रियलाइज तो हुआ है कि भाई मेरे से कुछ गलत हुआ है, इसलिए मैंने इसको रियलाइज किया, महसूस किया है। लेकिन एक होता है चेक करना, एक होता है चेंज करना। आपने चेकिंग तो कर लिया कि मेरे से कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए आपने क्या प्रयास किया, वो अगर आप देखेंगे तो आप उस गिल्ट से बाहर आएंगे। पर अगर आपने कुछ प्रयास नहीं किया है तो फिर आपको घड़ी घड़ी वो गिल्ट याद आएगा। लेकिन परमात्मा हमको बताते हैं कि हर चीज, हर व्यक्ति निर्दोष है, या हर चीज जो होती है वो समय अनुसार होती है, इसलिए हम उससे पाठ पढ़े कि आगे के लिए हमको अटेंशन देना है। ये भी नहीं कि वही गलती हम दोबारा करते रहे या मिस्टेक्स हम घड़ी घड़ी करते रहे, पर गिल्ट कॉन्शियस लेकर के हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसको हमें फॉरगेट करना पड़ेगा और फॉरगिव करना पड़ेगा, तो भूलना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पास को लेकर के हम नहीं जी सकते, भूतकाल को लेकर के नहीं जी सकते हैं, हमको वर्तमान में जीना है। तो जो प्रेजेंट में लाइफ एंजॉय करता है वही जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। अगर आप वर्तमान में भी अगर आपका पास्ट हावी हो जाता है और घड़ी घड़ी आपको वही चीजें याद आती है तो आप आज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आज जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है या फिर आप इतने अच्छे पल जी रहे हैं जीवन के, उसमें आपको वो खुशी महसूस नहीं होती है। मतलब ये हो गया ना कि कल मैंने सारा दिन कुछ सोचा और फिर आज मुझे लगा कि फालतू मैंने कल अपना टाइम वेस्ट किया, नहीं करती तो अच्छा होता था, ये तो चीज ही कुछ और थी और मैं तो बस यही सोचती रही। लेकिन जो मेरा कल गया है वो वापस तो मेरे पास नहीं आएगा ना, कि हर सेकंड की वैल्यू होती है। मेरा इतना सुंदर जीवन है, एक एक पल मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो जाने वाला पल जैसे कहते हैं ना आने वाला है, तो वो जो पल बीत गया है हम उसके बारे में नहीं सोचते रहे। आज जो पल मेरे पास है उसको मुझे कैसे अच्छा बनाना है और अच्छी तरह से उसको जीना है, और अच्छी तरह से जो पीछे गलतियां की हुई उनको सुधारते हुए उसको आगे लेके जाना है। इसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पहले वाला गलती भी निकल जाएगी, क्योंकि कुछ बेस्ट आपने दिया है ना अपने आप को। पहले आपने एक छोटी सी गलती की थी लेकिन आज आपने बहुत अच्छा कोई कार्य किया, तो फिर आप अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको फील होगा कि उस समय मेरे से गलती हुई थी छोटी सी, लेकिन आज अगर मैं देखती हूँ कि मैंने अपने वर्तमान को सुधारा है या मैंने उसको अच्छे से बनाया है, तो उसके सामने अच्छा हुआ कि उसके कारण मैंने ये सीखा। तो आप उससे सीख जरूर लीजिए लेकिन उसको पकड़ करके नहीं रखिए, उसका गिल्ट अंदर नहीं रखिए, अपने आप को माफ कीजिए। क्योंकि आप अपने आप को माफ करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और परमात्मा को भी तो दया का सागर कहते हैं, वो भी तो सभी को माफ करता है, क्षमा करता है, दया करता है। तो जितना जल्दी हम स्वयं को माफ करते हैं उतना हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते। तो आप जरूर अपने आप को माफ कीजिए, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हो जाती है लेकिन उनको पकड़ करके नहीं रखें, आगे के लिए अपने वर्तमान को और अच्छा स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने का ख्याल रखिए।
बात आपने कही दीदी, हम दूसरों को तो माफ करने में बहुत शूरवीर बन जाते हैं, हमें लगता है कि चलो हम दूसरों को माफ कर देते हैं, बट अपने आप को फॉरगिव करने की जो अपने बात बहुत बार वैल्यू समझाते हैं, हमें लगता है हम अपना देश छोटा कर लेते हैं, बट ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम खुद को माफ करें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ बलविंदर जी का है। बलविंदर जी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। बलविंदर पूछते हैं, मेरा बेटा शादी के बाद सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देता है, बहुत दुखी हो गए हैं ऐसा वो कहते हैं। गलती ना हो तो भी मतलब उनको सुनना पड़ता है, उनके गुस्से को हैंडल करना पड़ता है, तो ये एक सिचुएशन है जो ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या किया जाए ऐसे दूसरों के गुस्से को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए?
ऐसा हो जाता है रिलेशन में कि जो नजदीक की व्यक्ति होती है उससे अपेक्षाएं ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं, और उसके कारण अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते तो भी गुस्सा होता है या किसी और का गुस्सा भी निकाला जाता है। तो पहले तो उस व्यक्ति की सिचुएशन को समझना जरूरी है कि किस प्रकार से उसका कुछ मतलब बीच में उसका सैंडविच हो रहा है, या उसको किसकी सुनने पड़ रही है, या फिर अगर वो मतलब आपको हैंडल करना चाहता है तो भी उस तरीके से नहीं कर, हो सकता है कि उसके अंदर का भाव अच्छा हो लेकिन उसकी डिमांड अभी के रोल की ऐसी है कि उसको ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या आपको बोल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अंदर की भावनाएं अच्छी होती है लेकिन कभी कभी सिचुएशन के कारण, इरिटेशन के कारण भी व्यक्ति गुस्सा निकाल लेता है। लेकिन हमको किसी के भी गुस्से से अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमको परमात्मा बहुत अच्छी बात सिखाते हैं कि कोई अगर आपको दुख देवे भी तो आपको लेना नहीं है, भले वो उनका जो भी गुस्सा है या जो भी इरिटेशन है वो आपके ऊपर निकाल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा भी सोचिए कि आप उनके अपने हैं इसलिए ही वो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, गुस्सा जो होता है वो अपने उनके लिए होता है, ऐसा मैंने सुना है, और जो प्यार होता है वो दूसरों के लिए दिखाया जाता है। तो रियल रिलेशन में ऐसा होता है, लेकिन जब वो गुस्सा करते हैं तो एक को शांत बैठना चाहिए, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है ना। अगर वो कुछ बोलेंगे फिर आप कुछ बोलेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। इससे तो अच्छा है कि उस समय आप कुछ भी मत बोलिए और बाद में प्यार से उनको समझाएं कि मेरी गलती नहीं थी या जो आप सोच रहे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुरंत उसी समय उसको सिद्ध करने के लिए नहीं चाहिए। और पहले ये भाव मन से निकालिए कि शादी होने के बाद वो चिड़चिड़ा हो गया है, शादी होने के बाद वो गुस्सा कर रहा है। ये भी तो एक सिचुएशन आपने मन में पकड़ करके रखा है ना, पहले तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं शादी के बाद उसका क्या हो गया, इसके कारण वो मेरे ऊपर गुस्सा करता है। तो हो सकता है कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है, उसके कारण भी ऐसा लगता है कि पहले तो वो मेरा था तो मुझे बहुत केयर करता था, मेरा ध्यान रखता था, मेरा रिगार्ड रखता था, और अभी शायद उसके लाइफ में कोई और आ गया, इसके कारण शायद मेरी प्रायोरिटी कम हो गई है, इससे वो मेरे पर ही गुस्सा कर रहा है। ऐसा नहीं, उनका बिहेवियर देखिए, सबके गुस्सा करते हैं या सिर्फ आपके गुस्सा करते हैं, और अगर जो करते हैं तो भी उस समय आप शांत रहेंगे, मुख की ताली नहीं बजाना है। एक चुप सो सुख, आप उस घड़ी शांत बैठेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि मैं अपनी माँ को इतना कुछ बोलता हूँ लेकिन मेरी माँ तो बिल्कुल शांत बैठी है, या फिर वो हमारे लिए सोचती है, वो स्वीकार करती है, तो उनके उनके मन में आपके प्रति रिगार्ड बढ़ेगा। तो उस घड़ी आप पानी पीजिए या थोड़ा दूर चले जाइए या फिर ऐसा कुछ आप टेक्निक यूज कीजिए। सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिए कि वो कह रहे हैं लेकिन उनके कहने से, उनके बोलने से मुझे अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है, मेरी अंतर की शांति जो है वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। किसी के बोलने से हम डिस्टर्ब क्यों हो गए, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में क्यों होना चाहिए। कि वो कुछ अच्छा बोले तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, और उन्होंने कुछ थोड़ा भी बुरा बोला, गलत बोला, तो बस मुझे दुख हो जाता है, मैं नाराज हो जाती हूँ। इसका मतलब मेरी अपनी कोई ओन स्टेज है ही नहीं, मेरा जो कुछ भी है दूसरों के बोल के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे के कमेंट्स के ऊपर हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली स्थिति अगर हमारी रहेंगी, जैसे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है कि जैसे गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं कि वो एक बारी एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गए, तो वो उस गांव की सबसे झगड़ालू मतलब औरत थी, उसके द्वार पर ही जाकर के वो खड़े रहे। तो जैसे वो खड़े रहे ना, तो उसने जब उनको देखा उसको बहुत गुस्सा आया, वो कुछ कुछ बोलने लगी, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, बहुत उसने गालियां दी, ऊपर नीचे बोला, लेकिन वो बुद्ध जो है वो एकदम शांति से स्मित हास्य करते उसको देख रहे थे। तो उसने देखा मैं इतना इसको बोल रही हूँ कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो उसने बाद में पूछा कि महाराज मैंने आपको इतना कुछ कुछ बोला तो आप अभी तो मुझे कुछ बोल सकते थे ना रिटर्न में, आपने कैसे कुछ नहीं बोला, आप तो बड़ी शांति से खड़े रहे और मुझे देखते रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसको दिया कि देखो आपके पास ना एक ये भर करके कटोरा भर करके जैसे फल है, फ्रूट है, हाँ टोकरी भर करके, और आपकी बहुत इच्छा है कि वो फल आप मुझे दे दें, लेकिन अगर मैंने उसको स्वीकार नहीं किया तो किसके पास रहेंगे। तो उसने कहा मेरे पास रहेंगे। तो उन्होंने कहा वही हुआ फिर, आप इतने समय तक जो कुछ कह रही थी बोल रही थी वो मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो कहने का भाव क्या है, वो देने का काम करे, पर लेना है कि नहीं लेना है वो मेरे ऊपर डिपेंड है ना। मैं अगर उसको स्वीकार ही नहीं करूं, दू ही नहीं, तो फिर मेरा मेरे ऊपर उसका असर नहीं होगा, है कि नहीं। इस प्रकार से हम ध्यान रखें कि कोई कुछ भी दे हमको लेना नहीं है, जो मेरे जरूरत की चीज है, जो मुझे मोटिवेट करती है, जो मेरे एनर्जी लेवल को हाई करती है, मेरा उमंग उत्साह बढ़ाती है, ऐसी चीज हमको हमें स्वीकार करना है। बाकी ऐसी वेस्ट की चीजें जो मेरी स्थिति को डिस्टर्ब करे या मुझे दुख फील होवे, मुझे ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करना। अपने लिए डाइट हमको ध्यान में रखना है कि जिस कारण मेरे अंदर वायरस घुसता है या मेरी स्थिति बिगड़ती है, ऐसी कोई भी चीज मुझे स्वीकार नहीं करनी, भले कोई कितना भी प्यार से खिलाने की कोशिश करे, देने की कोशिश करे, मेरा कितना भी अपना हो, लेकिन मुझे उसको स्वीकार नहीं करना। ये अगर आप प्रिंसिपल बनाएंगे तो कोई आपको कुछ भी दे, अच्छा दे बुरा दे, आप उसके आधार से अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस प्रकार से शुभ भावनाएं बना के रखिए और एक्सेप्ट कीजिए, और उनके साथ अपना जो कनेक्शन है वो भी अच्छा बना के रखिए। सिर्फ वो गुस्से के टाइम मतलब रिएक्ट मत हुईए, और जो है वो आप बाद में उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। ओके,
बहुत अच्छी बात है जो आपने कही। एक तो ये है कि जब ऐसा हो रहा है तो आप मन में ऐसा नहीं सोचें, ये बना के नहीं रखें कि पहले तो ऐसा नहीं था, शादी के बाद ऐसा होने लगा है। इन चीजों को भी, इन थॉट्स को भी चेंज करने की कोशिश करें कि हो सकता है कोई वजह हो। और दूसरी चीज, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अगर आप अपने आप को अच्छा फीलिंग में रखेंगे, अगर आपकी स्थिति, आपकी शांति कहीं नहीं जा सके, ऐसा अगर आप अपने आप को पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एक और प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ। ये हमारे एक युवा दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, वो रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। और वो कहते हैं कि मैं ऐसे तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी व्यक्ति हूँ और स्पिरिचुअल भी हूँ, बट जब भी मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बात आती है तो मैं रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाती हूँ, ऐसा ही सवाल पूछते हैं। हालांकि ये पर्सनल सवाल है, ये कुछ लोगों के लिए भी अप्लाई करता है। जो निकिता नाम है इनका और ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने आप को अनलकी महसूस करती हैं जब ये रिलेशनशिप्स के बारे में बात आती है। तो इसके बारे में आप कैसे गाइड करना चाहेंगे?
जीवन में संबंध और वैभव, ये दो चीजें बहुत मायने रखती लोगों के, लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। अच्छे रिश्ते मिलना और रिश्तों को अच्छा बनाना, ये दो चीजें होती हैं। रिश्ते तो हमको कार्मिक अकाउंट से मिलते हैं, जिनके साथ हमारा कुछ होता है, पास का कार्मिक अकाउंट, उसी आधार से वही लोग हमारे संबंध संपर्क में आते, पूरी दुनिया में वही लोग हमारे कनेक्शन में आते हैं जिनके साथ हमारा कुछ है। तो जो भी लोग हमारे संबंध में आते हैं, हमको उनके प्रति अच्छी भावनाएं बना, कोई भी रिश्ते की जो पासवर्ड है या जो नींव है वो विश्वास होता है। अगर हम सबके प्रति अगर ट्रस्ट बना के रखते हैं अंदर में, तो भी वो विश्वास उनके मन में भी पैदा होता है, तो वो रिलेशन मजबूत होता है। जब तक किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट नहीं होता है, डाउट होता है, तो रिश्ता मजबूत हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एक तो फुल फेथ रखिए, जो भी रिश्ता आप निभा रहे हैं या जिसके साथ भी आपको अच्छा फील करना है, एक तो उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए। दूसरी चीज है कि जो जैसे है वैसे उनको स्वीकार कीजिए। कभी कभी रिश्तों में क्या हो जाता है, हम अपने होने के कारण उनको बदलना चाहते हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं। तो ये भी नहीं कि वो मेरा हिस्से में उसको चेंज करूं, जो मुझे अच्छा लगता है उसको वही करना है, उसी से बात करनी है, वही जाना है, वही खाना है जो मुझे पसंद है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में या प्यार में कभी भी बंधन नहीं होता है। रियल लव तो वो होता है जिसमें कोई भी बॉन्डेज नहीं होते हैं। तो ये बॉन्डेज अगर आप नहीं रखते हैं तो भी जैसे आप वो फ्रीडम देते, हर एक व्यक्ति को अपना फ्रीडम चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए। जब वो स्पेस नहीं मिल पाती है तो रिश्तों में क्या हो जाता है, खींचातान हो जाती है। तो हर एक व्यक्ति को अपना अपना स्पेस देना जरूरी होता है, भले वो कितना भी मेरा नजदीक हो, करीबी हो, लेकिन मुझे उसको उसकी स्पेस भी देनी है और साथ साथ उसके उसके ऊपर विश्वास भी रखना है। और ये नहीं सोचे कि जो भी रिश्ता मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा। पहले एक दो अनुभव ऐसे, इसके कारण जरूरी नहीं कि आने वाले सारे रिश्ते ऐसे, आप पहले से सोचेंगे कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरा लकी नहीं है, मैं अनलकी ही हूँ, तो जैसे आप वही वाइब्रेशन दे रहे सामने, वही कमांड दे रहे, तो वही ओके रहेगा। क्योंकि आपने अपना ओरा क्या बना के रखा है, क्या मुझे पक्का पता है कि जो भी मेरे रिलेशन में आएगा वो ऐसा ही करेगा, मेरा पहले से अनुभव ये है और मैं अनलकी हूँ इस चीज में। तो आपने जैसे वो प्रोग्रामिंग बना ही लिया है तो सामने वाले को वाइब्रेशन वही जाता है, तो वो वाइब्रेशन मत बनाइए, अपना वो ओरा मत बनाइए। अपने बारे में अच्छा सोचिए कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सबसे सुंदर रिश्ते हैं मेरे अपने जीवन में, और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिश्तों से। हर एक मुझे फेथ करता है, हर कोई मुझे प्यार करता है, मुझे समझता है, मुझे सहयोग करता है, मुझे मदद करता है, मैं सबकी अति प्रिय हूँ। इस प्रकार की सोच अगर आप रखेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका ओरा पहले क्लीन होगा। तो जो भी उस ओरा में आएगा वो जैसे वो उसको महसूस करेंगे। जैसे देखो मंदिर में दो लोग जाते, एक अच्छी भावना वाले और एक दूसरी बुरी भावना वाले भी लोग जाते हैं, लेकिन जैसे वो मंदिर में जाते हैं तुम देखते हैं कि वो मूर्ति को देख करके भी उसकी भावना चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति के अंदर वो ओरा है, उसके कारण भले वो गलत भाव लेकर के आए लेकिन फिर भी उसका भाव चेंज हो जाता है। तो जड़ मूर्ति के अंदर अगर ये वाइब्रेशन है तो हम तो चैतन्य है ना, प्रैक्टिकल में है। तो अगर हम अपने ओरा को क्लीन रखेंगे और फेथ रखेंगे और जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करेंगे, उसको फ्रीडम देंगे, स्पेस देंगे उसके उसको रिलेशन में, तो आप देखेंगे आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और पहले आप मन से ये निकाल लीजिए कि हमेशा आपके साथ ऐसे होता है, आप अनलकी, आप ऐसा सोचिए मैं बहुत लकी हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सब मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे जीवन में मिले हैं और बहुत अच्छे लोग मुझे जीवन में मिलेंगे, इस प्रकार की सोच आप अपने लिए रखी है तो आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, किस प्रकार से आपका ओरा क्लीन होगा, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, केयर करने वाले, आपको समझने वाले, प्यार करने वाले, सहयोग देने वाले।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी, जो हम ये पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक बार दो बार कोई चीज हमारे साथ होने लगती है तो हमें लगता है कि हमारे लाइफ में यही होता आ रहा है और यही सब कुछ आगे भी होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम उन थॉट पैटर्न्स को चेंज कर लें तो फिर बहुत कुछ बदल भी सकता है और ये भी हमारे हाथ में है। बहुत ही अच्छा उत्तर था ये और मैं सोचता हूँ बहुत सारे हमारे युवाओं के लिए ये बात अप्लाई करती है जो अपने रिश्तों को सुधारने की बात करते हैं, अपने रिलेशंस को ठीक रखने की बात करते हैं। तो स्पेस देना भी जरूरी है सामने वाले व्यक्ति को और साथ साथ ये भी चीज बताना कि चलिए ये अच्छी चीज हो रही है मेरे साथ, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, ये शुभ भावना लेके एक अच्छा पॉजिटिव थॉट लेके रखते हैं कुछ चीजें करना आसान होता है। एक फीडबैक है उर्मिला जी का जो आपने अभी भी जवाब दिया था दीदी, उसके लिए वो फीडबैक लिखते हैं। वो कहते हैं मैं अपना कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैं अपने किसी व्यक्तिगत परेशानी की वजह से 2 साल तक डिप्रेशन का शिकार रही, परंतु मैं जब से ज्ञान सुनने के बाद पूरी तरह से बाहर आ चुकी हूँ डिप्रेशन से और बहुत खुश हूँ अपने जीवन से। मैं गीत भी लिखती हूँ, मुझे लिखना बेहद पसंद है, मेरी रुचि है, साहित्य की विद्यार्थी और शिक्षिका भी हूँ और बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला। शुक्रिया भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, आप अपने फीडबैक को हमारे साथ शेयर कर रही हैं। सुनीता छाबरा भी फीडबैक देती हैं, वेरी नाइस आंसर, स्पेस इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा सुनीता जी यूट्यूब से कहते हैं। कनिका जैन जी कहते हैं ओम शांति, थैंक यू दीदी जी एंड टीम, रिजुविनेटिंग सेशंस एवरी डे, ग्रेट, थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए कनिका जी, वी ऑल्सो अप्रिशिएट कि आप ऐसे फीडबैक देते हैं। सीमा वर्मा जी फीडबैक देते हैं ओम शांति, ग्रेट चाय, actually looking forward to the evening time well spent, thank you Seema ji, ये हमें motivate करता है कि हम आपकी थोड़ी बहुत चीजों को positive और uplifting information के साथ भर सकें, थोड़ा समय ऐसा दे सकें। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ, श्वेता जी का सवाल है, श्वेता हमारे साथ Facebook से जुड़े हैं, वो कहते हैं sometimes we get deeply hurt by words and actions of our family members. In that situation, how should we manage our thoughts? हम अक्सर ये देखते हैं कभी कभार हमारे परिवार के सदस्यों से, उनके शब्दों से हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, उस समय पर हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, ये प्रश्न पूछते हैं।
फैमिली मेंबर्स को हम अपना मानते हैं और जब अपने ही कुछ इस प्रकार की चीज बोलते हैं तो थोड़ा बुरा तो लगता है सभी को, परंतु जो वो बोल रहे हैं हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पहले भी बताया कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, आप अपने समान में रहेंगे तो वो कुछ भी बोलेंगे तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। होता क्या है कि हम अपने समान में नहीं रहते हैं तो दूसरों के कमेंट्स हमारे ऊपर असर करते, वो कहेंगे तुम कुछ काम की नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं करते। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला लेकिन हमको पता है ना कि हम काम करते हैं, हम ट्रस्टवर्दी है, हम ईमानदार है, तो हम अगर ये जानते हैं तो किसी और के कहने से क्या बदलेगा या किसी और के बोलने से क्या बदलेगा, जबकि सच्चाई ये है ना कि मैं कर रही हूँ। तो अपने कर्म जो होते हैं वो हमें क्लियर होते हैं, तो अगर हमें अपने कर्मों के ऊपर भरोसा है और हम ईमानदारी से वो कर रहे हैं, हमारी खुशी कोई गायब नहीं कर सकता है। मतलब तो कोई कुछ भी बोले, अभी क्या होता है, सबका अपना अपना संस्कार होता है, थिंकिंग पैटर्न होता है, तो इसलिए लोग कुछ भी बोल देते हैं तो कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लेकिन वो बेकार की बात है तो हमको उसको नहीं लेना है, जो अपने काम की बात है वो लेनी है और उससे हम आगे बढ़ के दिखाए। मैं अपने जीवन की बात बताती हूँ कि कभी कभी गलत कमेंट्स भी मिलते हैं या नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन वही अगर हम अपना जुनून बना लेते हैं और उसी आधार से हम करके दिखाते, बन के दिखाते, तो जो लोग हमको पहले बोलते हैं वही बाद में हमको कहते हैं कि हमने कभी आपके लिए ऐसा बोला था, लेकिन आज हम देखते हैं कि आपने वो चीज प्रूव करके दिखाया तो हम शायद गलत थे कि हमने ऐसा आपके लिए बोला। तो इसलिए अगर वो बोलते भी है तो उसको हर्ट नहीं होइए आप, लेकिन उस चीज को अपना जुनून बनाइए। ये जो कहते हैं ना कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं हो सकता है या मैं ऐसी हूँ, तो मुझे उनके लिए सिद्ध नहीं करना है, परंतु मैं अपने आप को ऐसा बना के दिखाऊं कि उनके मतलब वो बोले ही नहीं कुछ, वो जवाब जो है मैं कर्म से उनको दूं, कि बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है, सिद्ध नहीं होगा, लेकिन कर्म में ऐसे करके दिखाऊं कि वो खुद ही प्रमाण दे कि मैं इनके बारे में ऐसा सोचती थी, इनके बारे में ऐसा बोलती थी, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे अच्छी तो यही चीज है, या इन्होंने कभी हमको पलट के जवाब भी नहीं दिया, या कभी भी ऐसा कुछ व्यवहार नहीं किया, और समय बहुत अच्छी औषधि है, कभी ना कभी तो उनको रियलाइज ही होगा कि हमने इनको इतना हर्ट किया है, हमने इनके साथ इतना मिसबिहेवियर किया है, लेकिन इन्होंने अपना व्यवहार, इनकी अपनी भावनाएं कभी हमारे लिए नहीं बदली, तो वही उनके लिए परिवर्तन रहेगा, फिर वो सदा काल के लिए जैसे आपको स्वीकार करेंगे या उनको अंदर से वो श्रेष्ठ भाव आपके लिए जागृत होगा। अभी आप अगर डिस्कस भी करेंगे, कुछ उनको समझाएंगे भी, तो शायद वो नहीं समझ भी पाएंगे या उस भाव से आपको नहीं भी देख पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी भावनाएं शुभ बना के रखती है और इस प्रकार से अपने कर्मों के अंदर वो करके दिखाती है, तो कर्म ऐसी चीज है जो व्यक्ति को दर्पण का काम करती है, और दर्पण हमेशा सही बोलता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको खुद भी दिखाई पड़ेगा कि हम सही है कि गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है, वो खुद रियलाइज करेंगे, तो यही परिवर्तन होता है, बोल के परिवर्तन नहीं होता है, उनको खुद महसूस होना चाहिए कि हम गलत, आप कहेंगे आप गलत है, आप 100 लोगों को बोलेंगे वो मेरे लिए गलत बोलते हैं, लेकिन उससे कुछ सिद्ध नहीं होने वाला, रिलेशन बिगड़ेंगे, लेकिन आप अगर इस प्रकार से कर्म करेंगे तो वो खुद रियलाइज करेंगे, तो देखो उनका परिवर्तन कितना फास्ट गति से, एक सेकंड में हो जाएगा, जो वो बहुत समय से बात चल रही है और सेकंड में वो बात को स्वीकार भी करेंगे खुद होकर के, और खुद होकर के चेंज होंगे। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उन चीजों से हर्ट नहीं होना है, लेकिन उसको अपनी क्षमता बनाए, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी को रेडियो स्टेशन पर सबसे पहले गए थे, उनको किस कारण रिजेक्ट किया था, उनके लंबे कद के कारण और उनके आवाज के कारण उनको रिजेक्ट किया गया था, लेकिन देखो उन्होंने क्या किया, उसी चीज को उन्होंने अपना वो ये बनाया, जुनून बनाया, और उसी के कारण उनकी पहचान बनी फिल्म इंडस्ट्री में, आज जो भी है वो उनके उस लंबे कद और उनके वो आवाज के कारण ही। तो लोग जिस चीज के लिए हमको बोलते हैं, हर्ट करते हैं, वो पत्थर जो फेंके है उससे हमको पुल बनाना होता है, उससे हमको हर्ट नहीं होना होता है, अपने आप को इंजोर नहीं करना होता है, वो लोगों का काम जो पत्थर मारना है, पत्थर का उपयोग क्या करना है, घर बांधना है, पुल बांधना है, या अपने आप को जख्मी करना है, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, पत्थर का उपयोग हमको क्या करना है, तो अच्छे के लिए उपयोग कीजिए, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है, तो फिर हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सामने से खुद ही उस चीज को महसूस करते हैं, हमारे कारण उनका भी परिवर्तन हो जाता है, उनके अंदर भी उसकी भावना सबके लिए फिर आ जाती है, वो आगे सोचते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते समय कि हाँ हमको किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
तो बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो यही थी कि आप खुद एक मिरर बन जाएं, आप अगर अच्छा सोचते हैं, अगर आप अच्छी चीजों को ही रिफ्लेक्ट करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। हमारे बोलने से लोग नहीं बदलते, बस हमें देख के बदलते हैं, जो आपने बात कही बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी, और मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल सही बात है कि हम ज्यादा प्रयास दूसरों को बदलने की करने से अच्छा ये है कि अगर हम अच्छाइयां दिखाते हैं तो वो चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। रंजना जी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, रंजना का सवाल है, वो कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट ब्रह्म मुहूर्त, बहुत सारे लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे लोगों को ये सुबह का मॉर्निंग मेडिटेशन के बारे में भी पता चला है, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, इज इट बिटवीन 3:20 to 3:40 और 4 AM to 5 AM, प्लीज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। Even I asked this question yesterday, but because of poor network connection, I left the video. The network was terrible. कल network की खराबी के कारण ये अपना सवाल सही से लिया नहीं जा सका और ये पूरा वीडियो नहीं देख पाए कल, ये कहते हैं, और कहते हैं कि ये जो सुबह का मेडिटेशन होता है वो सुबह 3:20 से 3:40 के बीच में होता है, सुबह 4 से 5 के बीच में होता है, कितने बजे करना होता है, ये सवाल पूछते हैं।
रंजना जी आपका सवाल अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त जो है अभी हमारी जो स्टार्टिंग होती है अमृत वेला की, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग, तो 3:30 बजे हम उठ जाते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जो लोग वर्किंग प्लेस पे होते हैं जिनको सारा दिन वर्क करना है तो वो लोग 4 बजे भी उठे तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि 3:30 बजे उठना है, आप 4 बजे भी उठ सकते, लेकिन जब भी आप उठे, उठने के बाद आप घड़ी कॉन्शियस नहीं हो जाए, घड़ी को नहीं देखी क्या अलार्म बज गया, घड़ी में इतने बजे अभी क्या हो गया, मेरा टाइम निकल गया, वो टाइम कॉन्शियस नहीं होना है, जैसे आप पहले उठते हैं सबसे पहले आपका मतलब फीलिंग्स गुड होना चाहिए, गुड मॉर्निंग कीजिए अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, और सोचिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, फुल ऑफ एनर्जी जाएगा, मेरे सारे काम बहुत अच्छे होंगे, मेरे सभी संबंध अच्छे रहेंगे। इस प्रकार से कुछ गुड थॉट्स दीजिए और फिर अपना मतलब शुरू कीजिए कारोबार। तो टाइम कॉन्शियस नहीं होना है, लेकिन वो समय का महत्व इसलिए क्योंकि उस समय बहुत बाहर शांति रहती है, सब डिटैच होते हैं अपने कारोबार से, इसलिए वो हमको मदद करता है मेडिटेशन में, इसलिए हम कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना है। लेकिन 3:30 बजे ही करो, ऐसा कुछ नॉट नेसेसरी। जो नए लोग हैं हम तो उनको ये भी कहते कि आप 4:30 भी उठेंगे और 4:45 तक भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कईयों को आदत ही नहीं होती उठने की, सवेरे 8 बजे तक सोने की आदत होती है, तो उनको शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होती है कि भाई हम कैसे 3:30 बजे उठेंगे, इस वजह से भी वो टेंस में आ जाते। तो हमको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, जब भी आपकी आंख खुले ध्यान में रखना है कि रात को जल्दी सोना है थोड़ा सा, ताकि हम जल्दी आंख हमारी खुले, जितनी जरूरी नींद उतनी भी हमको करनी है, ये नहीं कि उस टेंशन में सोए और फिर भारी होकर के सोए और फिर सवेरे उठे तो फिर टाइम कॉन्शियस हो जाए और भारी हो जाए और चिड़चिड़ हो जाए, ऐसे नहीं। जब भी उठे प्यार से उठे, अपना प्रोग्रामिंग देकर के सोए, फिर आप राइट टाइम पर आंख खुलेंगी। और हम लोगों का भी अनुभव है कि हम लोग इतने समय से मेडिटेशन करते हैं, अभी हमारे अलार्म के पहले आंख खुल जाती है, 3:30 उठना है तो 3:20, 3:25 उठ जाते हैं, तो फिर बस उस घड़ी हो जाता है गुड मॉर्निंग ओम शांति, फिर उसके बाद तैयार होके भी मेडिटेशन करते हैं। तो इसलिए टाइम कॉन्शियस मत सोचिए, आपको जो आपकी दिनचर्या है, आपको जितना वर्कलोड है, आपका फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, इस हिसाब से आप अपने सुटेबल टाइम को चॉइस कीजिए। बस वो 3:30 से 4:45 तक का होना चाहिए, उसके बीच में आप कभी भी उठ के कीजिए, ये हमारा ये है सुझाव है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। बहुत बार हम लोग ये सुनते हैं कि जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनको लगता है कि सुबह जल्दी उठना है तो मेडिटेशन जो डी स्ट्रेस करने का काम करना होता है मेडिटेशन में, वो मेडिटेशन का भी स्ट्रेस ले लेते हैं कि हाँ मेडिटेशन करना है। तो चीज आपने बहुत अच्छी कही कि टाइम कॉन्शियस नहीं होना है, सही है, उस समय का महत्व है, उस समय के बारे में आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए रात्रि समय पर सोना भी जरूरी है। और जैसे भी आप दिन की शुरुआत करते हैं, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचारों से होना चाहिए, पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए, हाई एनर्जी से शुरुआत करें तो उसका असर होता है। मैं सोचता हूँ बहुत सारे दोस्त इस चीज को समझेंगे, जिन लोगों को ये आदत है देर तक सोने की वो भी शायद इस चीज को समझेंगे कि धीरे धीरे इस चीज को ठीक किया जा सकता है, अपने दिन की शुरुआत में पॉजिटिव थॉट्स लिए जा सकते हैं। वैसे तो वक्त लगभग 7 बज रहे हैं और सवाल तो पूछने के लिए बहुत सारे हैं जो मैं नहीं ले पाऊंगा आज वक्त की कमी के कारण, बट आज हमारे बीच सुलभा दीदी जी आए और पूना से हमारे साथ लाइव जुड़े और उन्होंने बहुत सारे सरल जवाब दिए। हमारे जो यंग दोस्त थे उनके भी जो सवाल थे उनके लिए भी उन्होंने बहुत ही लाइट सा और आसान सा और प्रैक्टिकल जवाब दिया है। यूजुअली लोग स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को बहुत हैवी समझते हैं, ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ये सभी के पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, ऐसा सोचते थे, बट उसको सिंप्लीफाई करके अपने लाइफ के लिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आज आपने हमारे साथ शेयर की। जो हमारे दोस्त जिन्होंने आज इतने सारे सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक्स दिए, बहुत सारे लोगों ने थैंक यू कहा, बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएशन दिए, उसको भी हमने स्क्रीन पे थोड़े समय के लिए दिखाया। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हर दिन जुड़ते हैं, नए नए दोस्त भी हर दिन आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो शेयर भी करते हैं, सोशल मीडिया पर ये शेयर भी होता है, लोगों के काम की चीज भी होती है। तो आप जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, बातें शेयर करने के लिए, सवाल शेयर करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, एप्रिसिएशन देने के लिए, इन सभी चीज के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद जो आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर भी आप इन चीजों को देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद कहता हूं। मनीषा जी थैंक यू सो मच कहते हैं कि उनको उनके सारे प्रश्नों का सवाल मिल गया, वेरी पॉजिटिव सेशन, थैंक यू कहते हैं दीदी आपको, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू सो मच। सुनीता जी भी थैंक यू कहते हैं, सुनीत छाबरा जी थैंक यू कहते हैं, थैंक यू सो मच सुनीता जी। अनिल जी भी कहते हैं कैन वी सेव दिस लाइव लेटर इन वीडियो फॉर्म समवेयर एंड लेटर और इज इट नॉट सेव्ड, ये सवाल पूछते हैं अनिल जी। इस वीडियो को आप YouTube पे देख सकते हैं और Facebook पर भी आप इस वीडियो को देख ही सकते हैं, YouTube पर इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीरीज का, तो पिछले 22 दिनों में जो कुछ भी या उससे ज्यादा दिनों में जो कुछ भी हुआ है उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं brahmakumaris.com, सॉरी क्षमा करें youtube.com/brahmakumaris पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल चैनल पर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आप बाद में भी इन चीजों को देख सकते हैं। चंद्रकांत जी धन्यवाद कहते हैं, आई रिसीव गुड डिवाइन एनर्जी फ्रॉम दीज सेशन, थैंक यू, ओम शांति कहते हैं, थैंक यू सो मच। जयंती जी थैंक यू कहते हैं, गुड आंसर्स दीदी कहते हैं, थैंक यू। बलविंदर जी भी थैंक यू दीदी कहते हैं, थैंक यू सो मच। सीमा जी भी बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं, ग्रेट जॉब, वेरी नाइस कहते हैं, अप्रिसिएशन है, बहुत धन्यवाद। शिवाजी बार्षिकर कहते हैं, धन्यवाद मीठी दीदी जी, आपने बड़े धैर्यता से प्रश्नोत्तरों का उत्तर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। श्वेता सुमन जी भी थैंक यू कहते हैं, आई गॉट योर पॉइंट, विल डेफिनेटली फॉलो कहते हैं, थैंक यू सो मच श्वेता जी। मीना सक्सेना जी वेरी गुड एडवाइस, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू मीना सक्सेना जी आपका भी। श्याम जसरानी जी भी रिप्लाई के लिए कहते हैं, बेस्ट रिप्लाई, थैंक यू सो मच श्याम जी अप्रिशिएशन के लिए। बीके शिव कुमार कहते हैं, ओम शांति, बहुत बढ़िया, आप इस महामारी कोरोना में सभी आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं और सभी का मनोबल बढ़ा है और चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, थैंक यू शिव कुमार जी। सचिन गायकवाड़ जी थैंक यू कहते हैं, दीदी और पूरे टीम को धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सोचता हूँ अगर सारे में थैंक यू के मैसेजेस पढ़ूंगा तो शायद उसके लिए एक घंटा निकालना पड़ेगा, बट वी अप्रिशिएट योर अप्रिसिएशन और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम आपको रीच आउट करने की कोशिश करें। आप सभी दोस्तों की तरफ से मैं सुलभा दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ जो पुणे से हमारे साथ जुड़ी, थैंक यू सो मच दीदी आज हमारे साथ आने के लिए।
सब कुछ सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और श्री भाई रोहित भाई सभी टीम को बहुत दिल से शुक्रिया, शांति।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दीदी, हर हम हमारे मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन के साथ मेडिटेशन करते हैं, थोड़े समय हम ये राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो आप अगले 3-4 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन कराएं और हम आपके सानिध्य में मेडिटेशन भी करें।
शांति, बाह्य सभी बातों से कुछ समय के लिए अपने आप को डिटैच करते हैं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। विचार कीजिए, जीवन की सुंदर यात्रा में उसे परमात्मा के द्वारा ये सुंदर अमूल्य जीवन मिला है। इस गिफ्ट को और संभाल के रखने के लिए, इस वैल्यूबल गिफ्ट को यूज करने के लिए मुझे अपनी क्षमताओं का विकास करना है। उसे अपनी भावनाएं, अपनी सोच, अपनी वृत्ति, अपने बोल और अपने कर्मों को पॉजिटिव बना के रखना है, सकारात्मक और समर्थ बना के रखना है, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, विश्व के प्रति अच्छा सोचना है। शुभ सोचना भी एक बहुत अच्छी सेवा है। शुभ सोचते रहे, सकारात्मक सोचते रहे कि मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं अपने आप को लाइक करती हूं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरी सोसाइटी, मेरा स्टेट सब अच्छा है, सब मुझे सहयोग देते हैं, सब मुझे समझते हैं, परमात्मा जो मेरा सर्वशक्तिवान पिता है, सृष्टि नियंता है, वो प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर इस परीक्षा के समय भी हमेशा पल पल अपनी मदद का मुझे एहसास कराता है, उसकी छत्र छाया में मैं, मेरा परिवार, मेरा देश, पूरा विश्व का ग्लोब सिक्योर है, सेफ है। परिस्थिति आती है, चली जाती है, लेकिन उससे मुझे कुछ सीखना है। परमात्मा ने इस परिस्थिति के द्वारा जो मुझे सीख दी है, अपने अंदर की क्षमताएं, अपने गुण, अपनी विशेषताओं को देखने का ये जो सुंदर समय दिया है, उस समय का मुझे बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना है। अपने आप को देखना है, अपने आप से बातें करनी है, इंटरकनेक्ट होना है, अपने गुण और विशेषताओं को और दिखाना है, अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए पूरे विश्व ग्लोब के लिए अपने शुभ वाइब्रेशंस देने हैं। हम सभी परमात्मा के बच्चे उस परमात्मा की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित, सेफ और सिक्योर रहे। अनुभव करें उस दिव्य शक्ति की दिव्य किरणों को, अनंत शक्तियों को, जो अनंत शक्तियां सूर्य जैसे कीटाणुओं को समाप्त करता है। सूर्य की किरणें धरती के कीटाणुओं को खत्म करती है, ऐसे ज्ञान सूर्य परमात्मा की सारी शक्तियों की किरणें विश्व की इस महामारी को खत्म कर रही है और एक नया सुंदर श्रेष्ठ परिवर्तनशील वायु बेस जीवन हमें प्रदान कर रही है। ऐसी शुभ भावनाएं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति रोज बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति।